कोई नई बात नहीं कि जिन्हें खेलना नहीं आता वे बड़े खिलाड़ी साबित होते हैं, और हमारे देश में तो ऐसे बड़े खिलाड़ी हर खेल संघ में हैं। आज बात भारतीय कुश्ती की हो रही है और पहलवानों की भी, जो आज अपने रहनुमाओं के चरित्र के साथ अपने इस देश के नागरिकों के चरित्र से भी लड़ रहे हैं। दोस्तों, बीते दिनों एक महिला पहलवान साक्षी मलिक ने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। उनके पीछे देश के दो सबसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित पहलवानों ने अपने पदक वापस कर दिए। इस तरह की घटनाएं किसी भी खेल प्रेमी के लिए उदास करने वाली ही कही जाएंगी। ये खिलाड़ी जिन लोगों के विरोध में हैं, वे सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं और भारत के कुश्ती संघ पर उनका कब्जा है। ऐसे में उनके समर्थक भी बहुत हैं। इन्हीं समर्थकों ने आज उन्हीं खिलाड़ियों को बुरा भला कहा जिन पर कभी वे गर्व करते थे। बुरा भला क्यों कहा? इसलिए क्योंकि वे खिलाड़ी वो बात बोलने लगे थे जो इन कुश्ती संघ चलाने वालों के लिए खतरनाक साबित हो रहा था। ऐसे में उनका सिर ऊंचा करने वाले ये खिलाड़ी अब उनके लिए कलंक बन गए। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, कुछ समझदार समर्थकों ने उस महिला पहलवान सहित अवार्ड वापस करने वाले खिलाड़ियों की जाति खोजकर बता दी, जिससे सरकार को मौका मिल गया कि भला लोग तो हमारे समर्थक नहीं है। यह भावनाओं के आहत करने का दौर है। पता नहीं चलता कब किसकी कौन सी भावना आहत हो जाए। इन खिलाड़ियों के ऐसा करने के पीछे का एक कारण बाहुबली नेता के सहयोगी का एक खेल संघ के अध्यक्ष पद पर चुना जाना है। इससे पहले वो नेता ही बीते दशक भर से इस संघ को चला रहा था। उस पर नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन इस संघ के क्या नतीजे होंगे, उसको क्या सजा मिलेगी, यह सब सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। पुरस्कार वापसी और रोते हुए संन्यास के दो दिन के बाद हो रही किरकिरी के बाद खेल मंत्रालय ने संघ को बर्खास्त कर दिया। सवाल उठता है, पहले तो चुनाव ही क्यों होने दिए? उस माननीय पर आरोप इस साल की शुरुआत में ही लगाए गए थे, जिसके लिए तमाम पहलवानों सहित दूसरे खिलाड़ियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर दो बार धरना प्रदर्शन करना पड़ा था, तब जाकर उस पर एक FIR दर्ज कराई जा सकी थी। राष्ट्रवादी सरकार और देशभक्ति में डूबे देश में महिलाओं को इस तरह अपना काम जोड़ना पड़े, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सवाल उठता है, यह सब हुआ ही क्यों? क्या सरकार को उस माननीय के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर सरकार अपने फायदे के लिए उसको बचाना ही चाहती है? एक लड़की के आंसू और देश के सबसे बड़े सम्मान के कीमत पर भी? अगर ऐसा नहीं होता तो वो माननीय अब तक जेल में होते और लड़कियां प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय अपने अगले मुकाबले के लिए प्रैक्टिस कर रही होती। यह बड़ा सवाल है कि इन खिलाड़ियों के साथ व्यवस्था इस तरह खिलवाड़ क्यों कर रही है। व्यवस्था से ज्यादा सवाल हमारे समाज पर है, जिसका चरित्र पकड़ पाना भी मुश्किल हो रहा है। समाज के आम लोगों के साथ जो बड़े लोग महिला खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन पर गर्व करते थे, वे अब नजर नहीं आ रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन वे फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। यह सब हमारे इसी देश में हो रहा है, जहां नागरिकों को बोलने का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन अब शायद लोग बोलना नहीं चाहते, कुछ बदलना नहीं चाहते। शायद यही वजह है कि यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली महिला खिलाड़ी भी आज भरे समाज में भी अकेली खड़ी है। समाज जो कहता है उसके आदर्श ऊंचे हैं, उसकी विरासत बड़ी है, क्योंकि उसने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। यह हमारा देश आज जातियों के अपमान की बहस में उलझा हुआ है, लेकिन इस बात को भूल चुका है कि किसी भी देश में जातियों से ज़्यादा अहम होते हैं इंसान और आदर्श। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमारे देश के पहलवान जो यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वे अपनी जगह पर ठीक हैं, या उनमें कुछ है जो उन्हें गलत साबित करता है, उन्हें किसी के हाथ का खिलौना बनाता है? हो सकता है कि आप इन दोनों में से किसी एक विचार से सहमत हों। वो विचार चाहे जो भी हो, उसे कहिए, बोलिए और हमें बताइए, क्योंकि एक महान लोकतंत्र के लिए लोगों का बोलना ज़रूरी है, क्योंकि यही बोलने वाले इंसान एक लोकतंत्र की बुनियाद होते हैं। इसे कमज़ोर होने मत दीजिए। बोलिए मोबाइल वाणी पर नंबर 3 का बटन दबाकर, या अपने मोबाइल वाणी ऐप पर ऐड का बटन दबाकर अपनी बात कहिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।